ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இஸ் ஜீவன் மே பகவான் கே நாம் கே ஜாதா கோய் பி ஐசி வஸ்து நீ ஜோ சப்ஸே கீமதி ஹோ. பகவான் கா நாம் ஹமாரே லியே இஸ் ஜீவன் மே சப்ஸே படி பேட் ஹை பகவான் கி. ஹமாரி கோய் யோகியதா நீ ஹை, ஹம்னே கோய் தபஸ்யா நீ கியா ஹை, கோய் மெஹனத் நீ கியா ஹை, கோய் கோஜ் நீ கியா ஹை, சர்ச் நீ கியா ஹை. ஃபிர் பி பகவான் கா நாம் ஹம்கோ ப்ராப்த ஹுவா ஹை. ஐசே கேதே ஹே கி ஜோ வியக்தி பஹுத் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் யானி பஹுத் கிதாப் பகவான் கே படதே ஹே, பஹுத் சால் தபஸ்யா கர்தே ஹே, நியம் கா பாலன் கர்தே ஹே, யக்ய கர்தே ஹே, தான புண்ணிய கர்தே ஹே, ஹோலி ப்ளேஸ் யானி தீர்த்த யாத்ரா கர்தே ஹே, யே சப் பஹுத் ஜன்மோ தக் கர்னே கே பாத் மே உஸ்கே ஃபல் கே ரூப் மே பகவான் கே நாம் கி ப்ராப்தி ஹோதி ஹே. பலே ஆதமி பகவான் கா நாம் நீ லேதா ஹே, பலே தான புண்ணிய கர்தா ஹே, கிசி அந்தே கோ சஹாரா கர்தா ஹே, கிசி விதவா கோ சஹாரா கர்தா ஹே, கிசி அநாத் கோ சஹாரா தேதா ஹே, பூகே கோ கானா கிலாதா ஹே, கிசி கப்படே நீ உன்கோ கப்படே தேதா ஹே, யானி சமாஜ் சேவா கர்தா ஹே, தான புண்ணிய கர்தா ஹே, பகவான் கே தாம் மே ஜாகே வஹான் பர் குத் தின் ரஹதா ஹே, வஹான் பர் நதி மே ஸ்நான் கர்தா ஹே, பகவான் கி கிதாப் படதா ஹே, பகவான் கே தாரா தியே கயே பஹுத் நியம் பாலன் கர்தா ஹே, விரத் கர்தா ஹே, உபவாஸ் கர்தா ஹே. யே சப் கர்னே கே பாத் மே உஸ்கே ஃபல் கே ரூப் மே உஸ்கோ பகவான் கா நாம் ப்ராப்த் ஹோதா ஹே. ஆர் ஹம்னே தோ இஸ் லைஃப் மே ஐசா குச் பி நீ கியா ஹே, நா தபஸ்யா கியா ஹே, நா நியம் கா பாலன் கியா ஹே, நா கோய் பஹுத் சாரா கிதாப் படா ஹே, ஐசா குச் பி நீ. ஃபிர் பி ஹம்கோ பகவான் கா நாம் ப்ராப்த ஹே, க்யூ ஆர் கேசே? ரூல் தோ யே கே சப் கர்னே கே பாத் மே மில்தா ஹே, பாஞ்ச் சால் படாய் கர்னே கே பாத் எம்பிபிஎஸ் டிகிரி மில்தா ஹே, யே தோ பஹலே சே ஹி மிலா ஹுவா ஹே, படாய் பி கியே பினா யே கேசே ஹோ சக்தா ஹே? இஸ்கா மத்லப் யே ஹே கி பிச்லே ஜன்மோ மே ஆப்னே யே சப் குச் கர் லியா ஹே, பிச்லே கயி ஜன்மோ மே ஆப் லோகோ நே ஷாயத் சாஸ்திர படா ஹோகா, ஷாயத் தான புண்ணிய பி கியா ஹோகா, ஷாயத் பகவான் கே தாம் மே பி கயே ஹோங்கே ஆப், ஹோலி ப்ளேஸ் மே கயே ஹோங்கே, நதி மே ஸ்நான் பி கியா ஹோகா, கரீபோ கி சஹாயதா பி கி ஹோகி, சமாஜ் சேவா பி கியா ஹோகா. லேக்கின் யே சப் கர்னே கே பாத் பிச்லே ஜன்மோ மே இஸ் ஜன்ம மே ஆப்கோ பகவான் கா நாம் மிலா ஹே, ஆர் இத்தனா சப் மெஹனத் கர்னே கே பாத் மே ஆப்கோ அபி நாம் மிலா ஹே, ஆர் அபி ஆப்கோ உஸ் நாம் மே அகர் இன்ட்ரெஸ்ட் நீ ஹே, தோ இஸ்கே கலி ஏக் ஹி நாம் ஹே, இஸ்கோ க்யா போல் சக்தே ஹே? யெஸ், இஸ்கோ க்யா போல் சக்தே ஹே? பேட் லக். மெஹனத் குத் ஆப்னே கியா ஹே, நீ ஆப்கோ பகவான் கா நாம் நீ மில்தா தா, பகவான் கே நாம் கா பரிச்சய நீ ஹோதா தா, பகவான் கா ஜஹாம் நஹா ஜாம் ஜஹாம் நாம் ஜஹாம் லே ரஹே ஹே வஹான் பர் ஆப்கா பரிச்சய நீ ஹோதா, வஹான் பர் ஆப் நீ பஹுஞ்சதே. லேக்கின் பகவான் கி இச்சா கே அனுசார் ஆப் பக்தி விதான் ஹாஸ்பிட்டல் மே ஆ கயே ஹே, ஜஹாம் பர் பகவான் கா நாம் லியா ஜாதா ஹே, பக்த லோக் லேதே ஹே யஹான் பர் பகவான் கா நாம், பகவான் கா நாம் சுனாய் படதா ஹே. ஆர் ஐசா பி நீ கி ஆப்கோ பல் ஹரே கிருஷ்ணா ஹி கர்னா ஹே, கிசி கோ அகர் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெயராம் கர்னா ஹே ஓ பி கர் சக்தே ஹே, கிசி கோ ஜீசஸ் கா நாம் லேனா ஹே ஓ பி லே சக்தே ஹே, கிசி கோ அல்லாஹ் கா லேனா ஹே ஓ பி லே சக்தே ஹே, கிசி கோ ஜஹோவா கா லேனா ஹே ஓ பி லே சக்தே ஹே. ஜோ பி ஆப்கா பகவான் ஹே, பரம் பகவான் ஹே, பீச் வாலா பகவான் நீ, பரம் பகவான், ஆர் உஸ்கோ ஜிஸ் பி நாம் சே ஆப் புகார்னா சாஹதே ஹோ ஆப் புகார் சக்தே ஹோ, லேக்கின் புகார்னா சாஹியே, அகர் இத்தனா மௌகா ஹோனே பர் பி ஆப் அகர் நீ புகார்தே ஹே தோ உஸ்கோ கேவல் பேட் லக் கே சக்தே ஹே. ஐசா கேதே ஹே கி அகர் கோடே கோ பியாசே கோடே கோ ஆப் ஹாத் பகட்கர் நதி கினாரே தக் லேகே ஆயே, ஆர் வோ பியாசா பி ஹே, ஆர் நதி கா கினாரே பி ஆ கயா ஹே, ஃபிர் பி வோ பானி நீ பீதா ஹே, தோ ஆப் க்யா கர் சக்தே ஹோ? குச் நீ கர் சக்தே. நதி தக் லானே கா காம் ஆப்னே கர் தியா ஹே, லேக்கின் ஃபிர் பி கோடே கோ குத் வோ பானி பீனா படேகா நா, அப்னே ஆப் உஸ்கே முஹ் மே நீ குசேகா, வோ பேட் மே ஹோல் பனா கே உஸ்மே டியூப் மே சே அந்தர் தோடி படேகா, வோ உஸ்கோ குத் பீனா படேகா, வோ தப் உஸ்கி பியாஸ் புஜேகி. வைசேஹி ஹம் லோகோ கி அவஸ்தா ஹே, ஹம் சப் லோக் பகவான் கோ பூல் கர் இஸ் துனியா மே தடப் ரஹே ஹே, கஷ்ட போக் ரஹே ஹே, ஆர் वो हमको प्राप्त हो रहे हैं अभी उनके नाम के रूप में से, वो फिर भी हम उनको नहीं पुकार रहे, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको टाइम मिलता है। हाँ, ऐसे दुनिया में कौन सी जगह है बताओ? एक खाली मैंने देखा था सऊदी अरब में, सऊदी अरब में भी एक ही देश ऐसा है कि ऑन ड्यूटी काम छोड़कर आदमी नमाज पढ़ सकता है। सब मुसलमान लोग अपने काम में जब अजान होगी ना अल्लाहु अकबर, तुरंत काम बंद करके तुरंत मस्जिद में जाएंगे, और हर काम के जगह पर मस्जिद होता है, हॉस्पिटल हो, कंपनी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, उसमें एक छोटा मस्जिद होता है, मस्जिद, और वहाँ पर सब लोग पहुँचते हैं, 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ते हैं, फिर काम पे चले आते हैं। उसके बाद में मैंने केवल अपना ही हॉस्पिटल देखा है, भक्ति विद्या हॉस्पिटल, जिसमें हफ्ते में एक बार आधा घंटा आप एक साथ बैठकर ऑन ड्यूटी विद पगार जब कर सकते हो, उसके बाद एक घंटा विद पगार ऑन ड्यूटी आप कथा सुन सकते हो। हाँ, आप में से कुछ तो सोचते होंगे अच्छा टाइम पास है, काम थोड़ा छोड़ के बैठने को मिलेगा। देखो भगवान में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ऑफिशियली अपने को काम छोड़ के एक जगह बैठकर झपकी लेने का मौका मिलता है तो क्यों नहीं छोड़े उसको? उसको हम केवल, अगर आप सोचते हो ऐसा कि हमको तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, हम लोग हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कुछ भी हो, लेकिन हमको भगवान के नाम में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर भक्ति विद्या में नौकरी मिला है और ऑन ड्यूटी 1.5 घंटा टाइम पास करने का चांस मिलता है तो क्यों नहीं छोड़ो हम लोग? ऐसा अगर आप सोचते हो तो आपके इतने दुर्भाग्य और कोई नहीं होंगे मेरे विचार से, क्योंकि जन्म मृत्यु में सब लोग फंसे हुए हैं, सब लोग कष्ट भोग रहे हैं, और इससे छुटकारा पाने का मार्ग जो है वो हमको फ्री में प्राप्त हो रहा है, और फिर भी हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए? केवल दुर्दैवम इद्रशमिहा जनी न अनुरागः, इतना ही बोल सकते हैं। भगवान अपना प्रेम दे रहे हैं लेकिन वो प्रेम लेने का हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मन यहाँ वहाँ भटका हुआ है, इधर उधर देख रहा है, बात कर रहे हैं हम लोग, इधर सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, अच्छा मौका मिल रहा है ऑन ड्यूटी टाइम पास करने का, ऐसा हम सोचते होंगे तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? ऑन ड्यूटी मैनेजमेंट ने यहाँ पर टाइम क्यों दिया है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके जॉब के साथ साथ आपके जीवन का भी उद्धार होना चाहिए। जॉब देकर आपको पैसा मिल रहा है, पैसा मिलकर आपके बच्चों का खाना पीना पढ़ाई लिखाई हो रहा है, आप घर का इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं, तो आपका जीवन का उद्धार हो रहा है। लेकिन आपके आत्मा का उद्धार नहीं होगा तो केवल शरीर का उद्धार का कोई लाभ नहीं है। शरीर का कितना भी मेहनत करेंगे, कितना भी सहायता करेंगे, एक दिन ये शरीर मरने वाला है। कुछ भी करो आप, उसको बादाम पिस्ता खिलाओ, उसको एसी में रखो, उसको घी खिलाओ, हाँ, उसको सिल्क के कपड़े पहनाओ, उसको शैम्पू लगाओ, तो बाल सफ़ेद होंगे, शरीर बुढ़ा होगा, बीमारी होगी और एक दिन शरीर मर जाएगा। जितना साल इस शरीर पे आपने टाइम दिया वो सारा टाइम का मेहनत बेकार जाएगा और शरीर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस शरीर में जब आप रह रहे हो और वो समय आपको मिल रहा है, वो समय का इस्तेमाल अगर आपने भगवान को पुकारने के लिए किया तो भगवान के पास जाने के लिए आप योग्य हो जाएंगे इस लाइफ के एंड में। हम लोग कौन सी भी जाति के होंगे, कौन सी भी रंग के होंगे, कौन सी भाषा बोलने वाले होंगे, लेकिन भगवान के साथ मिलने का जो तरीका है वो सबके लिए एक ही है, वो है भगवान का नाम। वो पुकारना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर पुकारने में हम लोग यशस्वी हो गए, सफल हो गए, तो अगर क्रिश्चियन भी पुकारेगा, मुसलमान भी पुकारेगा, हिंदू पुकारेगा, सिख पुकारेगा, पारसी पुकारेगा, बुद्ध पुकारेगा, अगर पुकारेगा तो जीवन के अंत में उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और भगवान के राज्य में, किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज्य में उसको प्रवेश मिलेगा। हाँ, चाहे हम गरीब होंगे, अनपढ़ होंगे, दिखने में अच्छे नहीं होंगे, बीमार होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए एक ही रास्ता है। बीमारों के लिए अलग रास्ता नहीं है, सुंदर दिखने वालों को अलग रास्ता नहीं है, अमीर और सुंदर दिखने वाले लोगों को अलग रास्ता नहीं है, इंडियन के लिए अलग नहीं है, फॉरेनर के लिए भी अलग नहीं है। किधर भी जाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशा में किधर भी जाओगे आप तो भगवान को प्राप्त करने का रास्ता एक ही है। आज के टाइम में भगवान को प्राप्त करने का रास्ता उनका नाम है, और उनका नाम उन्होंने अपने को बड़ी कृपा से दिया है। जैसे लास्ट टाइम मैं बता रहा था आपको कि आप जिस शरीर में बैठे हो, हाँ, आप स्त्री शरीर में हो वो भी मनुष्य का शरीर है, आप पुरुष शरीर में हो ये भी मनुष्य का शरीर है, ये दोनों मनुष्य का शरीर है, खाली एक लिंग भेद है, खाली उसके अंदर एक नर है और एक मादी है। केवल इसी शरीर में, केवल मनुष्य के शरीर में भगवान को संबंध जोड़ने का मुमकिन इसमें है खाली बस, और किसी भी शरीर में भगवान से नाता जोड़ नहीं सकते हम लोग। कुत्ता, बिल्ली, पंछी, मछली, पेड़, सांप, कीटक, जितनी जातियां हैं वो किसी भी जाति को भगवान को कांटेक्ट करने का चांस नहीं है, ये केवल आपको और हमको है। इसमें आप लोग, कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, इनके लिए भी रास्ता सेम है। अगर MD पास हो गया आदमी और उसको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, और एक अनपढ़ है कोई और उसको भगवान को इंटरेस्ट नहीं है, दोनों भगवान के लिए बिल्कुल ऐसे ही है, सेम। और बहुत MD पढ़े लिखे हैं, उनको भगवान में इंटरेस्ट है, डॉक्टर हैं, भगवान का नाम जपते हैं, और एक गरीब आदमी एकदम काला दिखता है, बहुत सुंदर भी कुछ है नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं है, एकदम गरीब फटीचर है, घर में उसके छत में 5 होल बने हुए हैं, पानी बहता है, और उसको भगवान में इंटरेस्ट है, तो भगवान को दोनों व्यक्ति प्यारे हैं। आपको एक सुंदर कहानी बताऊंगा आज, क्योंकि जब मैं कहानी बताता हूं तो लोग सो जाते हैं, तो क्या करना है मैं समझ में नहीं आ रहा है, क्या करके आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें, इसका मैं विचार करते रहता हूं कि क्या करूं जिसमें आपको इंटरेस्ट आ जाए। तो मुझे एक कहानी अच्छी याद आती है इतिहास में, हाँ, तब तुकाराम महाराज थे ना इस दुनिया में, कुछ 400 साल पहले की बात होगी। तो तुकाराम महाराज की भजन और भक्ति देखकर शिवाजी महाराज को खबर पहुंचती है कि बड़े संत हमारे राज्य में कोई है। तो शिवाजी महाराज तो बड़े संतों का आदर करने वाले थे, तो वो बड़े प्रसन्न होते कि हमारे राज्य में तुकाराम महाराज जैसे संत हमारे राज्य में है, तो मैं जरूर उनको मिलना चाहूँगा। और जब राजा किसी को मिलने जाता है तो कभी भी खाली हाथ जाता नहीं वो, तो वो बड़े थाली में भर भर के जेवर, हीरा, माणिक, मोती, माला, अलंकार पहन के लेके गया वो तुकाराम महाराज को भेंट देने के लिए। तो जब वो पहुंचे तुकाराम महाराज के घर पे, तो तुकाराम महाराज घर पे नहीं थे, कहीं गए हुए थे, उनकी पत्नी थी घर पे, उनके बच्चे थे, और ये तुकाराम महाराज का घर इतने गरीब थे, वो इतने गरीब थे, उनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था, कोई धन नहीं था, एकदम गरीब की झोपड़ी थी उनके अंदर, मतलब दारिद्र था बहुत, धन की जरूरत थी। तो जैसे तुकाराम महाराज के ना होते हुए शिवाजी महाराज वहाँ पहुँचते हैं, और तुकाराम महाराज की पत्नी को वो सारा नजराना जो है ना भेंट दे देते। तुकाराम महाराज की पत्नी बड़ी खुश हो जाती है, अरे राजा ने आकर इतना हमको गहना दिया, इतना कपड़ा दिया, हाँ पूरा बोलते ना खण के ब्लाउज बहुत महंगे होते थे उस समय, बहुत जरी के ब्लाउज, जरी के बॉर्डर के ब्लाउज और बहुत सारा कपड़ा, तुरंत वो पहनने लगती है राजा के सैनिकों के सामने, तुरंत उसको पहनने लगती है, माला पहनने लगती है, बच्चों को पहनाती है, मुकुट पहनाती है, माला पहनाती है, टोपी पहनाती है, शिर फेस पहनाती है, मोती पहनाती है, और सज धज के खड़ी रहती है कि जब मेरे पति आएंगे तो कितने खुश होंगे कि अपने आवड़ा भाई कितनी सुंदर लग रही है आज, ऐसा उनको लगेगा। ये सोचकर तुकाराम की पत्नी जो है सब कुछ पहन लेती है, उतने में तुकाराम महाराज आते, जैसे तुकाराम महाराज आते देखते हैं क्या हो रहा है, मेरी पत्नी पागल हो रही है क्या, इतने सारे गहने पहन के खड़ी है, अरब कीमती कपड़े पहन के खड़ी है, वो सब उतारने लगते हैं उनके शरीर से, उतारो उसको, बच्चों के शरीर से उतारते हैं, इस वाइफ के शरीर से उतारते हैं। तो वाइफ बोलती है कि तुमको अगर अच्छा लगता है तो हमको अच्छा लगता है, हमको पहनने दो ना कम से कम, अगर तुमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो कम से कम हमको तो पहनने दो, घर में पैसा नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, मोती नहीं है, ये सब कुछ मिल रहा है, राजा हमको दे रहा है फ्री में, हमने चोरी तो नहीं किया है, और फिर भी हमारे शरीर से उतार रहे हो आप। तो ये सब जब चल रहा है, तुकाराम महाराज पत्नी को सब, पत्नी के शरीर से और बच्चे के शरीर से सब गहना उतार रहे हैं, तो उतने में शिवाजी महाराज वहाँ पहुँचते हैं, जिन्होंने अपने सैनिकों को आगे भेजा था सब नजराना लेकर, तो शिवाजी महाराज पहुँचते हैं और तुकाराम महाराज को कहता है, तो महाराज मैं तो आपका दास हूँ, राजा हूँ, लेकिन आपका दास हूँ, कुछ भेंट लाया था आपके लिए मैं, कृपा करके ले लीजिए आप, वैसे आपके घर में गरीबी है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, दो बातें कहते हैं, ध्यान से सुनना, हाँ दो बातें कहते हैं। वो कहते हैं, इतले आम्मी भिखारी वैकुंठा से अधिकारी। आपको लगता होगा हम यहाँ के भिखारी हैं, यहाँ के भिखारी, लेकिन इतने हम धनवान हैं कि वैकुंठ के अधिकारी हैं हम, हमको यहाँ के धन में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा धन भगवान के धाम है। और जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं बाइबल में, वो भी यही बोलते हैं, डोंट मेक योर वेल्थ इन दिस वर्ल्ड, मेक योर वेल्थ इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। वो क्या बोलते हैं, अपने दौलत जो है इस दुनिया में मत बनाओ, अपनी दौलत जो है अगली दुनिया में बनाओ, वहाँ रद्द के लिए अपनी दौलत अगली दुनिया में बनाओ, ऐसे भगवान बोलते हैं। क्या मतलब है उसका, वो कहते हैं कि ये दुनिया की दौलत जो है वो कितनी भी रहेगी तो सबको यहीं छोड़ के जाना होगा, एक मोती भी तुमको यहाँ से साथ में लेके जा सकते नहीं हम लोग, एक घर भी लेके जा सकते नहीं, साड़ी बना के रखे हो घर में आपके 50 साड़ी होगी, एक साड़ी आपके साथ में नहीं जाएगी, जल जाएगी यहीं पर, आत्मा को जाना पड़ेगा अकेले आगे। तो तुकाराम महाराज बता रहे हैं, इसलिए संत लोग हम लोग दुनियादारी का जो दौलत है उसमें ज़्यादा मन लगाते नहीं, जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, ज़्यादा मिलने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, जो आ रहा है मेहनत करने के बाद में उसमें संतुष्ट रहते हैं। और दूसरी बात बोलते हैं, बोलते ठीक है आपको नहीं इंटरेस्ट है तो आप मत पहनो, मत ले लो, बच्चों को और पत्नी को तो पहनने दो। वो कहते हैं, मैं अपनी पत्नी और बच्चे पर प्रेम करता हूँ, तो अगर मैं प्रेम करता हूँ तो जानबूझ के उनको जहर क्यों खिलाऊँ, ले जहर कैसे है, जो भगवान से अलग करता है वो जहर ही है। अभी ये जिस सब जितना समय पर वो पहन रही थी सब कुछ अलंकार कपड़ा, तब भगवान को भूल गई थी वो, इतना मन लगा था उसके अंदर, उसका मोती और माणिक और अलंकार के अंदर, कपड़े के अंदर भगवान को भूल गई थी पूरी तरह से वो। तो ये चीज़ को प्राप्त करने से वो खुश हो रही है लेकिन भगवान को भूल रही है, मतलब जहर पी रही है वो। और मैं मेरे प्रिय लोगों को जहर नहीं पिला सकता, मैं इन पर प्रेम करता हूँ, इनका कल्याण चाहता हूँ, मैं भजन करता हूँ तो इनके लिए भी पूजा करता हूँ, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इनका भी कल्याण हो जाए। अगर मैं वैकुंठ जाऊँगा तो मेरी इच्छा है कि इनको भी लेके जाऊँ, लेकिन जहर पे कि यही रहेंगे और मैं अकेले जाऊँगा तो कैसे होगा, और आगे भी जाके यही हो गया। तो कहरा महाराज चले गए और औड़ा भाई इधर ही रह गई। क्यों, दुनियादारी में मन लगाओगे तो दुनिया में ही रहना पड़ेगा, दुनियादारी से मन हटाओगे तो भगवान के पास जा सकेंगे। इसलिए यीशु क्रिस्त बोलते हैं बाइबल में, डोंट बी ऑफ द वर्ल्ड, बी इन द वर्ल्ड। अगर आपको जेल में जाना पड़ेगा तो जेल को अपना घर मानेंगे क्या, अरे अच्छा यहाँ पर फर्नीचर बनाओ, थोड़ा सा किचन में कैबिनेट नहीं है कैबिनेट बनाओ, बर्तन लेके आओ, गैस लाओ, कनेक्शन लाओ, टीवी का केबल भी लेके आओ, ऐसा करेंगे क्या? आप जानते हैं कि जेल आपका घर नहीं है, कितना भी साल रहेंगे तो भी आपको उसको अपना घर नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका घर नहीं है वो, आपका घर शहर में किधर तो भी है, यहाँ पर आपको ढाला गया है इसलिए रहना पड़ता है, इसलिए कहीं भी दिल नहीं लगाते आप कि मेरे को ये कमरा 18 नंबर का अच्छा लगता है, मेरे को 20 नंबर नहीं चाहिए, उधर हवा नहीं आती है, ऐसा नहीं बोलेंगे। 20 नंबर 18 नंबर 21 नंबर 22 नंबर सब जेल के कमरे हैं, सब कमरे में रहकर पत्थर तोड़ना पड़ता है, इसलिए किसी भी कमरे में मन नहीं लगता है अपना, घर की याद आती रहती है हमेशा। उसी तरह से ये दुनिया जो है, यीशु क्रिस्त भगवान बोलते हैं कि यहाँ के मत बनो, खाली यहाँ रहो बस, कुछ समय के लिए आए हो, दिल मत लगाओ इधर। दो बातें तुकाराम महाराज बोलते हैं, सबसे अच्छी बात क्या है, इथले आम्मी भिखारी वैकुंठा से अधिकारी। आपको लगता होगा कि यहाँ के हम भिखारी हैं, लेकिन भगवान के धाम जो है वहाँ के हम अधिकारी हैं, और वहाँ के अधिकारी हमेशा यहाँ गरीब दिखते हैं क्योंकि यहाँ के दौलत में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। हमारे संप्रदाय में भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नबार भूषेज शाह के राज्य में प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री थे, हम लोग को आज सुनकर यकीन भी नहीं आएगा, बड़े बड़े जहाज होते ना, जहाज कितने लंबे होते हैं, वो जहाज में भरकर समुद्र ऐसे पर्वत के समान, उनके पास में सोने की मोहरें थी, गिन सकते हैं क्या उसमें आप? एक जहाज में भर दिया अगर सोने का मोरे, कितने करोड़ रहेंगे उसके अंदर सोने के मोरे, इतना धन दौलत था उनको। और क्या बोलते हैं, यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलमति श्रेणिम सदा तुच्छवत, तुच्छ कस्पट के समान उसको उन्होंने फेंक दिया। और वृंदावन में आके एक लंगोटी पहनकर हर रोज अलग अलग पेड़ के नीचे रहते थे वो, और भगवान की किताब लिखते थे। इतना धन संपत्ति होने पर भी उन्होंने गरीब भिखारी होना पसंद किया। ऐसा नहीं थे कि वो गरीब थे, उन पर कुछ था ही नहीं, तो क्या करेंगे बेचारे, संत बन गए क्या करेंगे, ऐसा नहीं। उनके पास उस समय के जमाने में सबसे अधिक दौलत थी राजा के बाद, इतना धन उनको राजा ने दिया था, इतना बड़ा घर था उनका, महल था, क्या क्या नहीं था उनका। लेकिन जब भगवान ने उनको पुकारा, चैतन्य महाप्रभु ने, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, अर्थमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, धन दौलत, बोट से भरा हुआ सोने का मोरा, सब ब्राह्मणों को, गरीबों को, विधवाओं को बांट दिया उन्होंने, और जेब में एक भी फूटी कौड़ी ना रखते हुए वो वृंदावन में आए और वहाँ पर भिक्षा मांग के पेट भरा और भगवान का नाम पुकार करे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उनके पास धन था, इज्जत था, पद था, पोजिशन था, पावर थी, उससे भी अधिक शक्ति और आनंद भगवान के नाम में था। इसलिए उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर भगवान के नाम को अपनाया और वो जप करते करते वो वृंदावन में रहे। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन नटी भी, भगवान के नाम और नाम के जप में और गुणगान में और कीर्तन में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे कितने उदाहरण हैं हमारे पास। कहने का तात्पर्य क्या है, आप मत समझो कि आप गरीब हो तो कैसे भक्ति कर सकते हो, ये तो अमीर लोग कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे घर के हैं, उनको इंग्लिश आता है और मराठी आता है और संस्कृत भी आता है, ये सब उनके लिए, हमारे लिए कि हम तो गरीब बेचारे, हम लोग झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, प्लम्बिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के सामने कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, कोई सुंदर और कोई कुरूप नहीं है, क्योंकि मरने वाले शरीर में रहकर गर्व करने की जरूरत क्या है। जिस शरीर में आप रह रहे हो, जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये सब शरीर जो है मरने वाला है, इसमें इतना मिजाज करने की जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन दगा देगा शरीर आपको, ये जिस पर आप इतना गर्व करते हो कि मैं इतना सुंदर हूँ, इतना स्ट्रांग हूँ, इतना हैंडसम हूँ, इतनी सुंदर हूँ, ऐसा आपको लगता है, यही शरीर आपको दगा देगा एक दिन। इसमें पीठ दर्द होगा, इसमें किडनी का दर्द होगा, इसमें हार्ट अटैक होगा, इसमें दिमाग का पेन होगा, इसमें फ्रैक्चर हो जाएगा, इसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, छर्रे पड़ेंगे मुंह पर। यही शरीर है, इस पर आप इतना गर्व करोगे, वही आपको छोड़ के चला जाएगा एक दिन। हाँ, हमारे बचपन में एक बड़ी हीरोइन थी, उसका नाम था मर्लिन मनरो। आपने नाम सुना है किसी ने? आप लोग तो अभी नई पीढ़ी के लोग। हमारे बचपन में इटली या जर्मन कहीं भी फॉरन यूरोप कंट्री में एक हीरोइन थी मर्लिन मनरो, और वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। अभी हमारे पास कोई सुंदर हो गए तो यहाँ वहाँ के लोग उसके पीछे लगते हैं, भारत के गली में कोई होगा तो गली के आसपास के लड़के उसके पीछे लगते हैं, थोड़ी और बड़ी हीरोइन होगी तो भारत के लोग उसके पीछे लगते हैं। लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि देश विदेश के राजा और प्रधानमंत्री उसके पीछे थे। इस कंट्री का प्रेसिडेंट, उस कंट्री का प्रधानमंत्री, उस कंट्री का ये मंत्री, ऐसे लोग उसके पीछे थे, इतना इतनी सुंदर थी। मैंने फोटो भी इसको देखे, जैसे गोल्डन हेयर थे उसके, और क्या सुंदर थी वो औरत। लेकिन जब वो 40 साल की हो गई ना, तो उसके चेहरे पर ऐसा लाइन आने लगे, मराठी में क्या बोलते हैं सुरकुत्या, हिंदी में बोलते हैं झर्रियाँ, वो आने लगे। तो मेकअप करके छुपाने लगी वो, और फिर बाहर जाने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा समय आया कि मेकअप करने के बाद भी वो दिखने लगे, वो छुपा नहीं सके उसको। उसके बाद में उसको इतना डिप्रेशन आया कि उसने बाहर जाना ही बंद कर दिया। उसको अपने सौंदर्य पर इतना अटैचमेंट था कि वो इस विचार को सहन नहीं कर सकी कि मैं भी बुढ़ी हो सकती हूँ। इसको एक्सेप्ट नहीं किया उसने, बात को स्वीकार नहीं कर सकी वो कि मैं भी बुढ़ी हो रही हूँ, इस बात को वो सहन नहीं कर सकी। और फिर वो चार दीवारी में अपने आप को बंद करके रखने लगी, वो बाहर निकलना ही छोड़ दिया उसने। और चार दीवारी में बंद करने की वजह से, किसी को ना मिलने की वजह से, वो डिप्रेशन में गई, मेंटल डिप्रेशन, क्या बोलते हैं मराठी में उसको, मानसिक तनाव। उसके बाद वो पागल हो गई, और उसको उसके बाद में कभी भी हिम्मत नहीं हुई अपना चेहरा लोगों को दिखाने का। लोग क्या कहेंगे, मर्लिन मंद्रो सौंदर्यवती, विश्व की सौंदर्यवती बुढ़ी हो गई, इस बात को वो स्वीकार नहीं कर सकी। इसलिए उसने बहुत साल चार दीवारी में अपने आप को रखकर आखिर में दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अगर वो इस सत्य को स्वीकार करती तो अच्छी तरह जी पाती, हूँ लोगों से मिल पाती, हाँ मैं बुढ़ी हो रही हूँ, मैं भी अभी हमारे ज़माने में और एक थी डांसर, हेलन थी, हेलन हाँ एकदम कैबल डांस करती थी, बहुत सुंदर थी वो, उसका लड़का सलमान खान है, आज वो बहुत बुढ़ी हो गई है, लेकिन वो बाल सफ़ेद उसके हैं, लेकिन वो सबको मिलती है, इसलिए वो डिप्रेशन में नहीं है, वो जानती है कि मैं भी बुढ़ी हो सकती हूँ और बुढ़ी हो रही हूँ और बुढ़ी हो गई हूँ और मैं भी मरूँगी एक दिन। सुंदर सुंदर फिल्म की हीरोइंस मरी है ना बाद में, मीना कुमारी, नूतन, ये सब मर गए ना, कितने हीरो हीरो थे पिक्चर के, सब मर गए, कितने राजा के, हिटलर था, अलेक्जेंडर था, हाँ कितने देश के नेता थे, बहुत सुंदर थे, पावर था उनके अंदर, लेकिन काल के प्रभाव के बाद नेपोलियन था, सिकंदर था, सब किधर है आज, कोई नहीं आज। उस समय पावरफुल थे, बहुत सुंदर थे, बहुत हैंडसम थे, बहुत सुंदर थे, समय के प्रभाव से सब नष्ट हो गए, और उसी प्रकार के शरीर में हम लोग भी बैठे हुए हैं, हम लोग का शरीर भी उसी प्रकार का है, कुछ लोगों का चेहरा ऐसा है, कुछ लोगों का वैसा है, कुछ लोगों का जवान है, कुछ लोगों का बुढ़ा है। हम सब लोग मौत की दिशा में बड़ी तेज़ी से यात्रा कर रहे हैं, इसको भूलना नहीं, आप कभी भी नहीं भूलना, चाहे हमारी उम्र 20 साल होगी, चाहे हमारी उम्र 40 साल होगी या 50 साल होगी, हम सब लोग एक के पीछे हाथ पकड़कर मौत के दरवाजे तक चल रहे हैं बिना रुके हुए। जब सूरज उगता है और सूरज झुकता है तो हर झुकने वाला सूरज जो है पश्चिम वाला सूरज हमको याद दिलाता है एक दिन हम और मृत्यु के पास पहुंच चुके हैं। जब आपका बर्थडे आता है तो आपको याद दिलाता है हैप्पी बर्थडे टू यू, वैसा नहीं है वो, आपको याद दिला रहा है कि मौत के पास एक साल और नज़दीक पहुंच गया। तो आप खुशियां मना सकते हो, केक काट सकते हो, नाच सकते हो, गिफ्ट भी ले सकते हो, लेकिन मन के कोने में कम से कम याद करो कि ये सब लोग मुझे विश कर रहे हैं और मुझे बधाई दे रहे हैं, मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, कितना भाग्य का दिन है, लेकिन वो आपको बोल रहा है भैया एक साल मौत के पास गया तो अभी हाँ, ये सच्चाई है। लोग आपको बहका रहे हैं गिफ्ट देकर, केक काट कर आपको बहका रहे हैं, सर मैडम हैप्पी बर्थडे टू यू, ये साड़ी लो, ये शर्ट लो, ये ले लो, वो मटका ले लो, ये ले लो, केक ले लो, लेकिन असलियत क्या है, मौत के पास आप एक दिन एक साल और नज़दीक पहुंच गए। कोई लोग ऐसे देखा हुआ है, आपको यकीन नहीं आएगा, उनके बर्थडे के दिन ही उनकी मौत हो गई है। कितने लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में मैंने देखा है, ऑन हिज बर्थडे ओनली इट वॉज ए डेथ डे ऑल्सो, सेम डे उनकी डेथ हो गई। कोई लोग ऐसे होते हैं उनके बर्थडे के अंदर शादी होती है, उसी दिन पे शादी होती है उनकी, और कुछ लोग उनके बर्थडे के दिन मौत होती है। चाहे बर्थडे के दिन में हो या आगे पीछे हो, डेथ इज सर्टन, वो तो आने वाली है, निश्चित रूप से आने वाली है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इस किसी से भयकता नहीं है, वो जानता है कि मुझे अगर मृत्यु के प्रभाव से बचना है तो मुझे अल्लाह, जीसस, कृष्ण, राम, भगवान, इनको पुकारना होगा, उनके नाम के पुकारने में आलस नहीं करना होगा। आई शुड नॉट बिकम लेजी व्हेन आई चैंट द होली नेम। जब उनको पुकारने का समय आएगा तो मैं यहाँ वहाँ नहीं देखूँगा, मुझे नींद नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान से करूँगा उनको, क्योंकि उनको पुकारने के लिए आपको ये मशीन दिया है। कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, पंछी के शरीर में आप उनको पुकार नहीं सकते, आपको वो फैसिलिटी नहीं दिया है, ना जबान दिया ना दिमाग दिया है, केवल इस शरीर में दिया है। चाहे वो गरीब के घर का शरीर हो, अमीर का शरीर हो, पढ़ा लिखा शरीर हो या बुद्धू शरीर हो, उस शरीर में भगवान को पुकारने का मौका दिया है, इस मशीन में वो फैसिलिटी आपको देके रखा है, क्योंकि वो फैसिलिटी आपको दिया है उसी में आपका कल्याण है, और वो कल्याण की जो फैसिलिटी है वो आप सबको मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ऑन ड्यूटी विद पगार आपको जप करने का और भगवान के बारे में सुनने का मौका मिलता है, उसका लाभ लीजिए। आप यहाँ से कहीं और जाओगे, आप अगर आप गलती से भी कभी ऑन ड्यूटी माला लेकर बैठेंगे ना तो आपको मेमो मिलेगा, ये यहाँ पर नहीं करने का, ऑन ड्यूटी नहीं करने का, घर जाकर करने का, इधर काम के लिए आते हो, पगार मिलता है ना आपको, काम करो, ऐसे बोलेंगे। क्योंकि हमारे भक्त लोग बाहर काम करते ना, कभी कभी उनकी माला पूरी नहीं होती तो रिसेस में काम जब करते रहते हो, कभी कभी 5 मिनट ड्यूटी आवर में कर लिया तो बॉस की तरफ से उनको मेमो मिलता है कि साहब ये हरे कृष्ण का आदमी ड्यूटी पर माला करता है, तो बहुत बड़ा डांट मिलती है उनको। और यहाँ पर आपको ऑफिशियली मौका मिल रहा है। कभी कभी हम लोग को जो लाभ होता है ना उसका महत्व हम समझते नहीं, क्या है सर, टाइम पास है, बोले हरे कृष्ण करो, भगवान का नाम लो, जीसस को लाओ, रोजरी करो, तस्बीह करो, माला करो, बोलते रहते हैं, क्या है सब, हमको इंटरेस्ट नहीं उसके अंदर, हमको दुनियादारी में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन ये दुर्भाग्य का लक्षण है। इसलिए हमारे हॉस्पिटल में रथ यात्रा होती है, जन्माष्टमी होती है, हाँ, फिर गोवर्धन की पूजा होती है, इतने बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं हम लोग, जेब खर्च करते हैं और सब लोगों को उसमें बुलाते हैं, आप लोगों को कीर्तन करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, ऑन ड्यूटी सब लोग करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ समय के लिए अगर काम छोड़ के भी ये करेंगे, जब करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो आपके शरीर के साथ साथ जो पगार मिलके आपका कल्याण हो रहा है, साथ साथ आत्मा का कल्याण भी हो रहा है और होगा, इसलिए हमको मौका देते हैं। क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी ने हमको यही सिखाया था कि शरीर के साथ साथ आत्मा का उद्धार होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं करते हैं तो हम जानवर के समान हैं। इस शरीर में अगर दिल लगाएंगे तो बार बार इस शरीर को हम प्राप्त करते रहेंगे, और इस शरीर को केवल बना के रखेंगे और भगवान में दिल लगाएंगे तो शरीर छूटने के बाद में भगवान की प्राप्ति होगी। सिंपल है ये, बहुत बहुत सिंपल है। बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई में तरक्की करेगा, बहुत बिजनेस में मन लगाएगा तो बिजनेस बढ़ेगा, जहाँ पर आप मन लगाओगे वो बात बढ़ेगी, ये दुनिया का रिवाज है। बहुत व्यायाम करोगे तो मसल बढ़ेंगे अपने आप, हाँ, और बहुत भगवान का नाम लोगे तो भगवान पर प्रेम बढ़ेगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको तय करना है आपको क्या चाहिए। आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए मेहनत करोगे तो पैसा आ जाएगा, लेकिन मरोगे सब पैसा आपका यहाँ ही छोड़ के आपको जाना होगा, चलो गेट आउट, नहीं प्रभु 10 रुपये मेरे को लेके जाना, कम से कम मेरे को चाय पीने के रास्ते में नहीं मिलेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। अरे मेरा शरीर बहुत, इतने मेहनत किया मैंने, पाला पोसा शरीर को, बड़ा किया, इतना मैंने शरीर के साथ में इतना आनंद लिया, मुझे बहुत लगाव है शरीर में, छोड़ना नहीं शरीर को, कट आउट, शरीर से आउट, धक्के मार कर निकाला जाएगा आपको। यमराज को बोलेंगे 2 मिनट कम से कम मेरे बीवी से बात करने दो, आउट, घंटी बज गई तो 1 सेकेंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इतना प्रेम करके शरीर पर फायदा नहीं है आपको कुछ, एक झटके में बाहर फेंका जाएगा शरीर से। तो जवान हो, बुढ़ा हो, बीमार शरीर हो, सुंदर शरीर हो, बहुत इंपॉर्टेंट शरीर हो, कुछ फायदा नहीं है। आड़ा होकर जलाया जाएगा उसको, या तो दफनाया जाएगा या तो पंछियों को खिलाया जाएगा, इतनी वैल्यू हमारे शरीर की है। जब तक आप उस शरीर के अंदर हो तब तक उस शरीर का वैल्यू है। तो लोग आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, जब मैं मर जाऊँगा तो मुझसे कौन बात करेगा, बात ही नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि मेरा यंत्र खत्म हो गया तो कैसे बात करेंगे आप। जब तक मैं इस यंत्र में हूँ तब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, कुछ आदान प्रदान हो रहा है, कुछ लव, कुछ जो भावना है व्यक्त हो रही है, क्योंकि आप इसके अंदर हो इसलिए वैल्यू है इसको। और आप कौन हो, आप आत्मा हो, भगवान का अंश हो, और जब तक आप भगवान का अंश इस शरीर के अंदर है तो शरीर सुंदर भी दिखता है, जवान भी दिखता है, चलता फिरता भी दिखता है, काम करता हुआ दिखता है, कुछ अच्छा काम करते हुए दिखता है, कुछ प्राप्ति करते हुए, तरक्की करते हुए दिखता है वो। लेकिन जब आप भगवान के अंश उसमें से निकल जाते हो तो ये शरीर मुर्दा बन जाता है, केवल जलाने के योग्य बनता है, या दफनाने के योग्य बनता है, या पंछियों को खिलाने के योग्य बनता है। इसलिए इस शरीर में रहते हुए इस शरीर का जो लाभ आपको मिल रहा है उस पर ध्यान रखो, और लाभ सबसे बड़ा एक ही है, भगवान की प्राप्ति। इसी मशीन के अंदर आपको भगवान की प्राप्ति होने वाली है, इसलिए इस मशीन में जितना समय आपको रहने को मिल रहा है वो समय टाइम पास करके मत गवाओ, उसको व्यर्थ मत गवाओ। जितना शरीर में आपको समय मिल रहा है वो भगवान के साथ जोड़ने के लिए अपने आप को उसका इस्तेमाल करो, इसलिए समय मिलता है आपको, इसलिए हम याद देते हैं आपको बार बार। हम कोई संत नहीं है, बड़े कोई महात्मा नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि शरीर का एक एक क्षण बहुत कीमती है। जितना समय आपको मिल रहा है इस शरीर के अंदर वो मूल्यवान है, वो करोड़ों की दौलत देख के अभी प्राप्त नहीं कर सकते आप। हाँ, मैं बोलेगा मुझे 20 साल के समय के 5 मिनट अभी चाहिए। जब मैं 20 साल का था तब मैं इतना जोशपूर्ण था, वो शरीर के मुझे 5 मिनट अभी चाहिए, नहीं मिलेगी आपको। वो सारी धन दौलत लुटाने पर भी नहीं मिलेगी आप, क्योंकि वो जो गया समय के साथ वो गया, जो समय ने छीन लिया वो चला गया, वो कभी वापस नहीं मिलेगा आपको। समय के साथ हाथ से जो चीज़ छीनी जाती है वो कितना भी धन दौलत देने पर वापस लाई जा सकती नहीं है। और एक दिन ये समय आपका शरीर पूरा खींच लेगा आपकी तरफ से, तब उसका एक क्षण भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। इसलिए अभी जब आपको इस शरीर में समय मिल रहा है, तब आप भगवान को पुकारने का प्रयास करो। ये समय उसके लिए दिया गया है, और जब आप पुकारने में सफल होंगे तो आपका जीवन धन्य है, तब आप परम गति को प्राप्त हो जाएंगे, परम आनंद को प्राप्त करोगे। यहाँ पर रहते हुए भी आपको भगवान को पुकारते हुए परम आनंद की प्राप्ति होगी, और यहाँ पर जाने के बाद भी भगवान के धाम में जाने पर भी परम आनंद की प्राप्ति होगी, दोनों जगह पर, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। नहीं तो यहाँ पर दुख होगा और वहाँ पर एंट्री नहीं होगी, इसलिए जन्म जन्मांतर तक दुख ही दुख मिलेगा। एनीवे, आज के जगन्नाथ की रथ यात्रा की कथा जो है हमने जानबूझ के कैंसिल किया, क्योंकि जब तक भगवान के विषय में आपको सार पता नहीं है कि क्या करना है हमको, केवल टाइम पास के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि कुछ प्राप्ति करना है, अगर ये पता नहीं है तो बहुत सारी कहानी 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 बता के क्या लाभ है, क्या मिलने वाला है। जब तक उसका सार, उसका जो शिक्षा है वो हम नहीं समझ सकते हैं, तो अनंत कथा सुन के क्या लाभ है। उसका सार हमको समझना चाहिए कि कथा में क्या सीखना है हमको, कथा क्यों हुई, तुकाराम महाराज ने वो जेवर क्यों दुत्कार दिए, क्यों नकार दिए शिवाजी महाराज के हाथ से, क्या कारण था उसका, ये नहीं समझ में आएगा तो कथा सुन के चले जाएंगे, हाँ प्रसाद खा के निकल जाएंगे, लाभ नहीं होगा कुछ। लेकिन तुकाराम महाराज ने कितनी बड़ी बात बताई है, अम्मी हितले भिकारी वैकुंठा से अधिकारी, ये समझाने के लिए उन्होंने वो सब अस्वीकार कर दिया पूरा जेवर जेवर का। तो इस तरह से जगन्नाथ की रथ यात्रा आ रही है, इतना बड़ा महान उत्सव है। हाँ, केवल रथ यात्रा में खड़े रहने से आपको मृत्यु के समय भगवान की प्राप्ति होगी, इतना बड़ा लाभ दिया उसको। फिर चाहे आप काले हो, गोरे हो, और गुजराती हो, या साउथ इंडियन हो, या नैरोबी वाले निगरो हो, या रशिया के आदमी हो, या अमेरिकन हो, या क्रिश्चियन हो, या हिंदू हो, या काले हो, गोरे हो, कोई भी इंसान होगा, जानवर होगा, वो भी रथ यात्रा में खड़ा होकर भगवान को देखेगा अपने आँख से। केवल वो काम करने से उसको भगवान की प्राप्ति होगी जीवन के अंत में, इतनी बड़ी प्राप्ति है उसके अंदर। आप मानो या ना मानो, विश्वास रखो या ना, बाय चांस भी वहाँ खड़े हो गए ना, तो भी आपको ये लाभ होने वाला है। और इतना बड़ा उत्सव अगर हम टाइम पास के रूप में देखेंगे तो उत्सव का लाभ नहीं होगा आपको। और इतना बड़ा उत्सव अगर पूरी जानकारी के साथ देखेंगे आप तो पूरा लाभ होगा आपको। रस्ते से 10 लोग गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं उनको, कुछ देर बाद कोई आगे बोलता है, अरे सुना तुमने, तुम्हारा खोया हुआ पति है ना, वो देखो वो जा रहा है उधर से। तो आप देखिए, अरे हाँ, तो बाल बड़े हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, अच्छा हाँ वो मेरा पति है। पहले आपने ऐसे ही देखा, बाद में जानकारी के साथ गौर से देखा तो आपने पहचाना। वैसे रथ यात्रा ऐसे ही टाइम पास में गए, कुछ लाभ नहीं होगा। पूरी जानकारी कर ली और पूरे गौर से देखा तो पूरा लाभ होगा आपको। तो देखना और देखना, इसमें अंतर होता है। बहुत ऐसे देख रहे हैं और अरे ये तो ये रशिया का प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा बोला, अरे अच्छा रशिया का प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा आम आदमी खड़ा है, ऐसा बैठा था, आम आदमी में चल रहा था। बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि ये रशिया का प्राइम मिनिस्टर है, रोड पे चल रहा है रथ यात्रा में। ऐसे होता है, रशिया में हुआ है ऐसे। तो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, अगर आपको जानकारी है, नॉलेज है, और उस नॉलेज के साथ में पूरे लाभ के साथ में आप भाग ले रहे हो वो उत्सव में, तो उत्सव आपका कल्याण करेगा, कंप्लीट उद्धार करेगा आपका। यू विल बी डिलीवर्ड, इस जग से कष्ट से मुक्त हो जाओगे आप। इसलिए अगली बार जब आओगे जब करने के लिए अगले मंगलवार को, तो बड़े उत्साह के साथ आना। टाइम पास करने के लिए मत आना, भगवान के नाम को पुकारने के लिए आना, और दिल लगा के पुकारना। जो लोग सो रहे हैं उनको जगाकर पुकारने के लिए बोलना, और गोल गोल बैठकर सबके साथ में बैठकर उसको उत्साह देना, क्योंकि यही एक ऐसी वस्तु है जो सबके लिए कल्याणकारी है। और कोई वस्तु इस दुनिया में कल्याणकारी नहीं है। दुनिया के काम के लिए ठीक है, प्रमोशन मिल रहा है, पगार मिल रहा है, पगार बढ़ रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, इट्स नॉट बैड, काम चल रहा है, ठीक, चलने दो, लेकिन आपका सही उद्धार और कल्याण उसमें नहीं है। जब भगवान की याद आती है उसमें आपका कल्याण है। जो व्यक्ति भगवान की याद दिलाता है वो हमारा कल्याणकारी व्यक्ति है, वो हमारे लिए सही मार्गदर्शक है, सही हितकारी व्यक्ति वो है जो हमको भगवान को याद दिलाता है। बाकी पैसे की याद दिलाने वाला, शरीर की याद दिलाने वाला, बीवी की याद दिलाने वाला बहुत लोग होते हैं, लाभ नहीं होता कुछ उससे। जो भगवान की याद दिलाता है उसी से हमारा कल्याण होता है। तो सबको मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप सबको विनती करता हूँ कि आप चाहे स्पिरिचुअल केयर में काम करते हो या नर्सिंग में काम कर रहे हो, हाउसकीपिंग में कर रहे हो, डॉक्टर हो या नर्स हो, कि लाइब्रेरी में हो कि फार्मेसी में हो कि नर्सिंग स्कूल में हो, किधर भी हो आप सबके लोगों, सब लोगों का जीवन का लक्ष्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति करना। जो मेरा लक्ष्य है वही आपका लक्ष्य, इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी सब कर्तव्य के रूप में करते रहना। डू एवरीथिंग एज ड्यूटी, लेकिन गिव योर हार्ट टू द लॉर्ड, हृदय जो है वो भगवान को देना, बाकी सब कर्तव्य के रूप में करना। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर दिल लगाना चाहिए वहाँ पर दिमाग लगाते, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पर दिल लगाते, दुनियादारी में दिल लगा देते हैं और भगवान को दिमाग से सोचते हैं। जहाँ भगवान को दिल देना है उसको दिमाग से सोचते हैं, और जहाँ पर दुनियादारी को दिमाग से काम करना है वहाँ पर दिल दे देते, पूरा अपने आप को अर्पण कर देते हैं। इसलिए हम हार जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कष्ट प्राप्त करते हैं। इसलिए दिल भगवान को देना और दुनियादारी में दिमाग लगाना, ठीक है। सब लोग बोलना एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, हरे कृष्णा।